హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత చాప్టర్ 9 టెక్స్ట్ నంబర్ 31 అధ్యాయం శ్లోక్ నంబర్ 31. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన్ మే ప్రవేశ్ కర్నే సే పహలే హృదయ సే సమస్త భౌతిక ఇచ్ఛాఓ ఔర్ బుద్ధి సే భౌతిక విచారో కా పరిత్యాగ కర్కే పవిత్ర హృదయ ఔర్ శుద్ధ బుద్ధి కే సాథ్ గురు ఔర్ గౌరంగ సే कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले స్వయం రూప కదామహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహకణ రఘునాథం వితంతం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహకణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగే రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానో సూతదేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భగవద్గీతా మాతకి జయ హో. అధ్యాయ 9 పరమ గుహ్య జ్ఞాన్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ శ్లోక్ నంబర్ 31. భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కే ముఖార్వింద్ సే నిక్లే హుయే ఇన్ అమృతమయ శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. భగవాన్ కహతే హై క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహ నమే భక్తః ప్రణశ్యతి క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్తః ప్రణశ్యతి క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్తః ప్రణశ్యతి. శబ్దాత్ క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ. క్షిప్రం మతలబ్ శీఘ్ర ही भवति यानी बन जाता है धर्मात्मा यानी धर्मपरायण। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति मतलब स्थायी शांति को निगच्छति यानी प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रति जानी ही यानी घोषणा कर दो, न मे भक्त न मतलब कभी नहीं मे मनी मेरा भक्त यानी भक्त प्रणश्यति अर्थात नष्ट होता है। अनुवाद, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोग वश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख हुआ है। सामान्यतः नौ प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कर्म कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद् गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 31। इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसमें भगवान ने बताया कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना अर्जुन, वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ होगा, भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। जब इसे जान जाओगे तो तुम संसार के समस्त कलेशों से मुक्त हो जाओगे, समस्त दुखों से निवृत्त हो जाओगे, समस्त प्रॉब्लम्स तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। क्या जानने से, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी चैप्टर नंबर 9 के विषय में भगवान ने कहा कि यह वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अशुभात नहीं। तो अगर इस पूरे अध्याय का कंक्लूशन निकाला जाए तो इसमें भगवान ने हमें कृष्ण भक्ति के विषय में बताया है कि वास्तव में कृष्ण भक्ति ऐसी है जो करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब भगवान ने पहले कह दिया कि देखो ये जो मेरी भक्ति करता है तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से किसी और की नहीं अकेले मेरे की भक्ति करता है तो तेषां नित्याभियुक्तानां, जो कंटिन्यूस मेरी भक्ति में लगा रहता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ मैं, उसके पास जो कुछ है उसको सुरक्षित करता हूँ और जो नहीं है उसे प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरी भक्ति के लक्षण है। और फिर बताया कि मेरी भक्ति करना कठिन भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो भी कर सकते हो प्रेम से करो मेरे लिए। पत्ता पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयस्यति, पत्ता दे दो, एक पानी का गिलास भर के दे दो, एक फूल मुझे दे दो, तो यदि तुम प्रेम से करोगे तो मैं तुम्हारा वो दिया हुआ स्वीकार करूंगा। इतना भी नहीं कर सकते तो छोड़ो, रहने दो, जो करते हो वो तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे प्रसन्न करने, सिर्फ भावना ही चेंज कर दो। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, जो कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भावना चेंज कर लो खाली, तो भी शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, तो भी तुम्हारे समस्त शुभ और अशुभ फल कर्म फलों के से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और कर्मों के बंधन से बंधन समाप्त हो जाएंगे तो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। देखो अर्जुन, मेरे लिए सब बराबर हैं, जो भक्ति नहीं करते समोहम सर्वभूतेषु वो सब बराबर हैं, किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी को प्रिय रखता हूँ, न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, फिर भी ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्याम, जो प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे बन जाते हैं तो मैं उनका बन जाता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद भगवान ने ये बताया कि मेरी भक्ति करने वाले के अंदर भले ही कोई सद्गुण ना हो, उसका सबसे बड़ा गुण यही है कि वो मेरी भक्ति करता है। भले ही वो चांडाल क्यों ना हो, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारियों में अत्यंत बड़ा महान दुराचारी क्यों ना हो, अत्यंत घृणित कार्य करने वाला क्यों ना हो, भजन भजते माम अनन्य भाग, अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, तो उसे साधु ही समझना, क्योंकि वो अपने संकल्प में दृढ़ है, वो भक्ति तो कर रहा है ना, उससे अकस्मात यदि कोई उससे गलती हो गई है, कोई घृणित कार्य हो गया है तो भी साधुरेव समन्तव्य, वो मेरी भक्ति कर रहा है, उसका सबसे बड़ा गुण यही है। भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कृष्ण एक शरणम, कि वो कृष्ण के शरण को कभी नहीं छोड़ता, कृष्ण के चरण को कभी नहीं छोड़ता, कृष्ण के नाम को कभी नहीं छोड़ता, कृष्ण के कथाओं को श्रवण करना कभी नहीं छोड़ता। ये यदि भक्ति कर रहा है, भगवान ने कहा भजते माम अनन्य भाव, यदि वो भक्ति कर रहा है तो उसे साधु मानो, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित तो हिस्सा, वो सही मार्ग पर खड़ा है, वो सही जगह पे खड़ा है तो वो सही हो जाएगा, उसके जो अकस्मात पतन है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो मानो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, फिर इस तरह जो गलतियां करता रहेगा और तुम्हारी भक्ति करता रहेगा उसके लिए तो बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि गलतियां करते करते कब वो पहुंचेगा ना जाने तुम्हारे पास, बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, और इस तरह से तो बहुत समय लग जाएगा आपको प्राप्त करने के लिए। तब कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। समय क्या लगेगा, ऐसे भगवान खड़े हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में और चुटकी बजा के कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, समय नहीं लगेगा, एक क्षण में वो धर्मात्मा बन जाएगा। अरे तुम क्या समझते हो मेरे नाम को, मेरे नाम के अंदर इतना पावर है, इतना बल है, मेरी कथाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्या श्रवण कीर्तन रिद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि विधिनोति सुहृत्सताम श्रुवताम स्वकथा कृष्ण। जब भक्त प्रेम से भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, यदि वो कंटिन्यूस, जैसे भगवान ने कहा कि भजते माम अनन्य भाग, तो कैसे भजन करेगा? पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन में यदि वो कंटिन्यूस लगा रहेगा तो क्या होगा? हृदयंतस्थो या भद्राणी, हृदय के अंदर मलिनता है, हृदय के अंदर अभद्र है, हृदय के अंदर भौतिक आसक्ति है, जिसके कारण उसका अकस्मात पतन हो जाता है। परंतु यदि वो लगा रहेगा भगवान की कथाओं को श्रवण करने में, भगवान के कीर्तन को करने में, भगवान के पवित्र नाम को जप करने से, तो हृदयंतस्थो या भद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, विधिनोति सुहृत् सताम, विधिनोति ये धो देंगे, ये कथाएं, भगवान का नाम, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उसके हृदय में स्थित इन अभद्रों को साफ कर देंगे, खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है, जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जैसे जैसे भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं, तो हृदय के अंदर वैराग्य को लाने के लिए कोई हमें अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वैराग्य या भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को दूर करने का कोई ऐसा प्रोसेस है कि मार्केट से थोड़ा वैराग्य खरीद करके हम सुबह शाम हृदय के ऊपर डालें कि भाई हाँ, इससे मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा? नहीं। वैराग्य उत्पन्न होगा कैसे? जब भक्ति आप करोगे तो। क्योंकि वैराग्य क्या है? भक्ति महारानी के पुत्र का नाम है। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति महारानी के पुत्र है। और भक्ति क्या है? जो आप अभी कर रहे हो, श्रवण जब हम भगवान के विषय में करते हैं, जब भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो वैराग्य स्वतः आ रहा होता है। और वैराग्य आना जो है वो स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी है। यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, फिर भी भौतिक आसक्ति लगी रही, तो फिर क्या प्राप्त किया, लाभ क्या है? लाभ यही तो है कि भगवान के चरणों में आसक्ति जुड़े और भौतिक आसक्ति समाप्त हो, तो भक्त जो है वो उसके लिए कंटिन्यूस श्रम कर रहा होता है। तो फिर जब वो कर रहा होता है तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, उसमें समय थोड़े लगेगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो जा रहा हो साफ सुथरे कपड़े पहन के, रास्ते में बारिश आ जाए और बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाए, अब कीचड़ जमा हो गया तो स्लिप हो गया, पूरे कपड़े गंदे हो गए, पूरा शरीर गंदा हो गया, पूरा कीचड़ से लथपथ हो गया। अब जो भी उसे देखेगा क्या कहेगा? ये तो गंदा है, हट, गंदा है, गंदा पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, कोई इसको स्पर्श करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे जाता है वो और एक बहुत बड़ा शावर होता है लगा हुआ, उस शावर को ऑन करता है, उसके नीचे खड़ा हो जाता है, ठीक है? तो फिर क्या होता है, कोई कहेगा वो गंदा है, वो बोलेगा हाँ मैं गंदा हूँ, लेकिन सही जगह पे खड़ा हो गया हूँ, अब नीचे खड़ा हुआ ना शावर के, अभी साफ हो जाऊंगा, अभी उसमें गंदगी सारी खत्म हो जाएगी ना थोड़ी देर में। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ये भौतिक गंदगी है, भौतिक अभद्र है जो हृदय में बहुत बहुत सालों से जमा है, लेकिन क्या है, सम्यक व्यवस्थितो ही सा, वो अगर पूरे संकल्प के साथ अडिग खड़ा है, मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरी कथाओं को श्रवण कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, मेरा भजन कर, मेरा कीर्तन कर रहा है, तो समझो वो अभी धुल जाएगा, उसका सारा मेल समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं बचेगी, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो फटाफट से धर्मात्मा बन जाए। वास्तव में भक्तों, भगवत प्राप्ति के और भी अन्य अन्य उपाय बताए गए हैं, जैसे योग करना, ज्ञान करना, यज्ञ करना, पूजा करना, अलग अलग वो बताए गए, तरीके बताए गए हैं। लेकिन बाकी जितने भी तरीके हैं ना भगवत प्राप्ति के, जैसे योग सिद्धि, योग जैसे हमने 6 चैप्टर में पढ़ा आष्टांग योग, अब आष्टांग योग जब मतलब दूसरे जितने भी तरीके हैं उसमें क्या होता है, उसमें विघ्न आता है, विघ्न आना स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर कोई विघ्न कभी भी नहीं आ सकता। भागवतम के एकादश स्कंध में जब निमि महाराज नव योगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं कि भगवत भक्ति के विषय में, भागवत धर्म के विषय में बताइए, तब वो कहते हैं न यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हि चेत्, धावन्नि मील्यवानेत्र न स्खलिन्न पतेतिह। या नास्था या नरो राजन, ये जो भगवत भक्ति का मार्ग है उसके अंदर न प्रमादिये तकरिचित, उसके अंदर कोई विघ्न आता ही नहीं है कभी भी। भगवान ने कहा नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह वो मार्ग है जिसमें कभी कोई घाटा नहीं है, ना ही कभी कोई घाटा होता है और न कभी कोई हानि होती है, न ही हिरास होता है, न नुकसान होता है, न कमी होती है। ये तो प्रतिक्षण वर्तमान है, इसके अंदर कभी भी कोई विघ्न। तो जैसे दूसरे साधन हम बता रहे थे, जैसे योग सिद्धि, अब अष्टांग योग जब हम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, यम नियम धारणा, और जब आगे जाते हैं तो सिद्धि आती है, है ना। सिद्धि जब प्राप्त होती है तो जो योगी होता है उसके अंदर बहुत सारे चमत्कार करने की शक्ति आती है। अणिमा लघिमा, यानी अपने आप को बहुत सूक्ष्म बना सकता है, अपने आप को बहुत ही विशाल बना सकता है, जल के ऊपर चल सकता है, अग्नि के ऊपर, अग्नि के साथ है ना रह सकता है। तो अलग अलग उसके अंदर सिद्धियां आती हैं और यह सिद्धियां उसके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, विघ्न डालने लगती है, फिर वो अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाता है, बस चमत्कार दिखाकर अपनी पूजा। भगवान की भक्ति करना क्योंकि प्रेम तो था नहीं, अब वो कर रहा था सिद्धि और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई, योग सिद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर वो उसको ऐसा लगा कि अभी तो मेरे अंदर ही इतना पावर है तो फिर मैं किसी और की भक्ति क्या करूं, इसी पावर को एंजॉय करूं। तो फिर वो ये अपनी शक्तियां दिखा दिखाकर, चमत्कार दिखा दिखाकर अपनी ही पूजा करवाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा यज्ञ मार्ग, कुछ लोग यज्ञ करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अब यज्ञ मार्ग ऐसा है कि एक तो उसके लिए इस भौतिक जगत में, आज जो कलयुग है उस कलयुग में आपको शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता। अब शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता, यज्ञ में मंत्रों को पढ़ने के टाइम पर बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा सावधान रहकर मंत्रों को उच्चारण किया जाता है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर उस मंत्र का प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। भागवत में हम पढ़ेंगे, बहुत दफा ऐसा होगा कि अगर यज्ञ के समय गलत मंत्र पढ़ते तो उसका पूरा प्रभाव उलट पड़ जाता है। और दूसरा ये कि यज्ञ विधि इतनी कठिन है कि जब यज्ञ करते हैं तो उस समय भी, जैसे हमने देखा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए आए थे, लेकिन इतना जब यज्ञ होने शुरू हो जाता है तो एक घंटा दो घंटा चार घंटे के बाद इतना धुआं होने लगता है कि उस वो धुआं ही विघ्न डाल रहा होता है, प्रेम नहीं होता उस कार्य में, ऐसा लग रहा होता है कि समाप्त हो जाए, अब थका देता है। महाराज राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि मैं गया था पहले कुंभ के मेले में, यज्ञ हो रहा था, सारे साधु लोग बैठ के यज्ञ कर रहे थे और वो करके दिखा रहे थे, इसे रुमाल हाथ में पकड़े, बोला एक घंटा दो घंटा यज्ञ करने के बाद इतना धुआं हो गया, मुंह पे हाथ रख के रुमाल रख के सब लोग सुहाग नहीं बोल रहे थे, सारे जो ब्राह्मण थे वो से बोलते आह कर रहे थे कि अभी जल्दी से यज्ञ समाप्त। और कहने का अर्थ ये है कि वो धुआं ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा होता है, प्रेम नहीं होता उसमें। और दूसरा, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी देखते हैं कि उनकी पूजा जो हो रही होती है वो भी, मतलब इससे साधना प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो पुनः से कि भगवान ने जैसे बताया कि क्षीण पुण्य मृत्यु लोग कमीशन थे कि वो क्षीण पुण्य वापस से उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो योग में ज्ञान में, ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान योग से जब हम कृष्ण प्राप्ति करना चाहते ना, तो क्योंकि उसमें भगवान के साथ प्रीति नहीं है, तो वो प्रीति ना होने के कारण उसमें आनंद नहीं आता, बहुत ही ड्राई होता है, आनंद करने वाला नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को प्रेम की आवश्यकता है। तो केवल भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें आत्मा को संतुष्ट किया जा सकता है। इसीलिए शास्त्र कहता है सवे पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति यदोक्षजे। ये सारे पुंसा जितने भी जीव हैं उनका वास्तविक धर्म है यतोर भक्ति अधोक्षजे। और यह ऐसा मार्ग है कि धावन्नी मिल्यवानेत्र अजत धावन्नी, अगर भागोगे ना इस भक्ति के रास्ते पर, भागोगे और वो भी कैसे, मिल्य निमिल्य वानेत्र, अपने नेत्रों को बंद करके भी यदि इसमें दौड़ोगे तभी न स्खलित न पदेयत, कि उसमें फिर भी ना तो तुम कभी लड़खड़ाओगे, ना तुम पतित होगे, ना गिरोगे, कभी भी नहीं आपका पतन होगा। यानी कि मतलब जैसे दौड़ोगे क्या, कि अगर उसमें कोई भक्ति का ऐसा अंग कभी छूट जाता है, जैसे अगर जैसे हम लोग है ना दौड़ते हैं तो क्या होता है, भूमि बहुत ज्यादा छूटती है ना, देर अगर सीधा सीधा चलेंगे तो आराम आराम से फर्श पे पांव रख के चलेंगे, लेकिन अगर दौड़ेंगे तो क्या होगा, भूमि बहुत ज्यादा छूटती है। तो भक्ति में यदि कोई अंग छूट जाता है, जैसे हम रोजाना 16 माला करते हैं, कभी हमारी माला छूट जाती है, या हम दूसरा कोई हमारा नियम होता है कि भाई रोज हम भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता श्रवण करेंगे, या फिर रोजाना आरती करेंगे, लेकिन कभी छूट जाता है तो भी उससे भगवान कभी क्रोधित नहीं होते। भगवान बल्कि आपको और सहायता करते हैं कि आप अच्छे से कर सको। और दूसरा ये कि यदि वो आप कर रहे हो तो यदि उस कार्य में कैसा होता है ना, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हम पैर को फर्श पे बहुत अच्छे से नहीं जमा सकते, एक तो दो काम हो रहे होते हैं, एक तो भूमि ज्यादा छूट रही होती है, और जैसे हम चल रहे होते हैं तो पांव को कैसे आराम से फर्श पे रखते हैं, लेकिन जब दौड़ रहे होते हैं तो फिर पांव को आराम से फर्श पे रखते नहीं है, बल्कि फटाफट से मतलब जल्दी जल्दी उठ रहा पूरा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई साधना कर रहे होते हैं अपनी, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं सही तरह से, जैसे नाम जप करते। अभी देखो ये जो अंग्रेज हैं, जितने भी पास वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी भक्त हैं, वो महामंत्र जप करते हैं, सीधी तरह से महामंत्र भी उनके मुख से निकलता नहीं, हरे रामो 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 हर, मतलब ऐसे बोलते हैं हरे कृष्ण, सही तरह से उनके शब्द भी उच्चारण नहीं होते। तो क्या भगवान उनका ये नाम जप स्वीकार नहीं करेंगे? अरे ये तो भगवान का डायरेक्ट से नाम ले रहे हैं, भगवान के पवित्र महामंत्र का जप कर रहे हैं। वो अजामिल तो अपने बेटे को बुला रहा था नारायण आओ, और वहां से आ गए। तो भगवान जो है वो बहुत करुणा करते हैं, वास्तव में भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इसलिए वो कभी भी उनका पतन होने नहीं देते हैं। इसलिए कहा न स्खलित, वो कभी भी अपने मार्ग से कभी भी उनका पतन नहीं होता है, न स्खलित वो कभी भी गिरते नहीं है अपने पथ से। तो क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि कृष्ण वो व्यक्ति है जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने कह दिया कि ये भजन्ते तो माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैते वो मेरे हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ तो वो भी मेरे हृदय में। पहले भगवान ने कह दिया पंच जैमिन में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी तरह से डील करता हूँ। अब तुम मुझसे प्रेम करने के लिए मेरे पास आता है जो वक्त, तो मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। तो साधक भगवान से बहुत प्रेम करता है, जो भक्ति साधक होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसे भले कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो प्रेम अवश्य करता है। तभी तो खाने से पहले सोचता है कि मुझे कृष्ण को खिलाना है, पीने से पहले सोचता है कि नहीं मैं कृष्ण को पहले पिलाऊंगा। कोई भी वस्तु का जब उपयोग करता है तब उसे लगता है कि ये इससे मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। जो भी कार्य करता है, उठते बैठते जाते सोते, बस उसे यही होता है। भले उसे कोई विधि विधान नहीं भी पता होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा यही होती है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करता हूँ, करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ गलती नहीं देखी जाती, है ना। जैसे हमारे घर में कोई नौकर होता है तो नौकर से हम प्रेम नहीं करते, फिर अगर वो उसको कहें कि भाई आप मेरे लिए कोई, जैसे कोई है ना नौकर का स्वामी होता है ना, वो उसको बोलता है मेरे लिए चाय बना के आओ, और वो चाय बना के आए उसके अंदर चीनी डालना भूल जाए तो कितना क्रोधित होगा। ये चाय है, ये ऐसी चाय बनाते हैं तुम, आईंदा से उसको कहां से निकाल, तो चाय बनाने भी तुमको नहीं आती, ऐसी चाय बनाते। और वही व्यक्ति अपनी पत्नी से यदि प्रेम करता है, मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ प्रेम होता है वहां गलती नहीं देखी जाती, अगर वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और कभी उसकी पत्नी चाय बना के आती है और उसमें चीनी नहीं डालती, फिर अचानक से उसे याद आ जाता है और वो कहती है मैं चीनी डालना भूल गई, चाय बहुत फीकी होगी ना, तब वो कहेगा कि नहीं फीकी कहाँ है, तुमने चीनी नहीं डाली लेकिन तुमने अपने इतने हाथों से बना के आई ना, तो तुम्हारे हाथों की मिठास इसके अंदर है। मतलब भक्त जब कार्य कर रहा होता है तो प्रेम से कर रहा होता है, तो भगवान जो है वो देख रहे हैं कि वो भले इसके अंदर गलती है मगर वो भगवान उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो भक्त से जब कोई गलती होती है तो भगवान उससे कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भगवान ने 7.15 में कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो हृदय से दुष्कृति होते हैं, मूढ़ होते हैं, जो नरधम होते हैं, वो तो मेरी शरण में आते ही नहीं है। इसका मतलब है जो भगवान की शरण में गए हैं वो दुष्कृति नहीं है, वो सुकृति है। उनसे गलती हो गई होती है, वो गलती करना नहीं चाहते हैं, वो मतलब अकस्मात उनके अंदर कोई ऐसा माया का आक्रमण हो जाता है जिसके कारण उससे गलती हो जाती है। तो जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती है। तब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न उठाया है, तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार से भक्त हो जाता है। यह प्रश्न ठीक है, अब वो भले ही भक्त है लेकिन यदि उसने कार्य बहुत घृणित किया है तो उसको भक्त कैसे कहा जा सकता है। तब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। वो सद्गुण नहीं, भगवान के साथ जिसका कोई संबंध नहीं होता, जो भगवान का नाम जप नहीं करता, जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता, जो भगवान की कोई सेवा नहीं करता, उसके अंदर कोई भी सद्गुण आ नहीं सकता। और ये बात भागवतम में भी बताई गई है। और भक्त क्या करता है, भक्त सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमशों से शुद्ध करने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने कह दिया भले ही आप बहुत अपराधी हो, अपराधिक कर्म करते हो, लेकिन फिर भी उसे साधो मानो और वो जल्दी से सही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त सोचे भले ठीक है अपराध हो रहे हैं तो होने दो, भगवान ने कहा है ना मैं बन जाऊंगा भक्त, नहीं। भक्त जो है वो सदैव अपनी भजन क्रिया को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से करता है। नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, उसमें लगा रहता है। और जैसे जैसे वो भक्ति करता जाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के अंदर जो कलमश है, जो गंदगी है, वो साफ होती जाती है, मार्जन होती जाती है। और फिर भक्ति भक्त जो जैसे जैसे आगे उन्नति कैसे पता चलेगी, अगर आज आप भक्ति में उन्नति नहीं कर रहे हो। हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग 10 साल से माला कर रहे हैं और अभी तक अपनी माला में सीरियस नहीं हो रहे हैं, कभी कोई माला छूट जाती है, कभी ध्यान से बैठते नहीं है, सीरियस होकर माला करने की इच्छा नहीं करते और बस ऐसे ही चलते फिरते, कभी टीवी के सामने, कभी गार्डन में, कभी ऐसे ही बातें करते करते माला कर रहे हैं, तो सीरियसनेस कहाँ है, भक्ति कहाँ है? फिर इसको कैसे भक्त कहा जा सकता है? वो तो बस टाइम पास कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है। भक्त का मतलब, अभी आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी फील्ड में, तो आपको क्या करना है, उन्नति करनी है ना। एक जगह पर यदि आप कोई आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और 10 साल से आपको सिर्फ एक ही काम आता है और उस कंपनी का और कुछ भी काम करना नहीं सीखा, भाई ये इस तरह से लोगों को डील करना है, ऐसे करना है, आप आगे उन्नति करना, आपको प्रमोशन होना चाहिए ना, यहीं पर खड़े रहना है क्या? तो भक्ति में भी हमें प्रमोशन, एक माला से शुरू किया तो दो, दो से किया चार, चार से किया आठ, 16 तक आना है और 16 माला को भी इतना गंभीरता से करना है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा गंभीर होंगे, सिंसियर होंगे, तो फिर भगवान कहते हैं योग क्षेमम वाम्यम, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं स्वयं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारे इन अपराधों को, इन कलमशों को खत्म करने के लिए। तो यदि भगवान ने ये कह दिया कि वो जो मेरी भक्ति करता है वो अगर कोई अपराध भी करता है तो भी उसे साधु मानना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया गलती करने का, जाओ तुम तो मेरे भक्त हो ना, चलो तुम गलती करोगे तो भी तुम्हें सब साधु बोलेंगे, तुमको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। भक्त को भी अपनी साधना में सीरियस होना पड़ेगा, तभी वो शाश्वत शांति निगच्छति, तभी वो शाश्वत शांति को, इटर्नल आनंद को, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, मैं हमेशा बात करता हूँ, कोई प्रण करता हूँ, कोई प्रतिज्ञा लेता हूँ, और मेरा भक्त यदि उसकी बदली में कोई प्रतिज्ञा लेता है तो मुझे वो तोड़नी पड़ती है। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण से हथियार उठा के रहूंगा, जबकि कृष्ण ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब लेकिन कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उठाऊंगा नहीं, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं उठवा के रहूंगा, तो फिर भगवान को अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। भगवान ने कह दिया था एक बार, भगवान अभी भीष्म पितामह को देखो एक बार बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो कोई भी उसके इस निर्णय को तोड़ नहीं सका। लेकिन भगवान इतना प्यार करते हैं अपने भक्त से, इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, वो अपने नियम को तोड़ते रहते हैं। तो सोचा कि अगर मैं ये प्रतिज्ञा करूंगा, मैं ये घोषणा करूंगा कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, तो लोग सोचेंगे ये तो कृष्ण ने कहा है ना, ये तो अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ता रहता है, हमेशा तोड़ता है, तो ये भी तोड़ देगा। लेकिन अगर मेरा भक्त घोषणा करेगा तो फिर अपने भक्त की घोषणा को पूरा करने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, फिर तो मैं कुछ भी कर दूंगा उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रति जानी है नमे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब पूरी भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही, वो खुद ही कह रहे हैं ये ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, मन मनाओ सब कहा, लेकिन ये घोषणा करने के लिए कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा, ये अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुमने एक बार घोषणा कर दी तो तुम्हारे इस वाक्य को सत्य करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, इसे सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए कवि ऋषि महाराज निमि को बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग इतना सुगम है कि यावन्नि मील्यवानेत्र न स्खलेन पदेतिह, कि इस पर यदि नेत्र मूंद करके दौड़ा भी जाए तो भी न कभी कोई लड़खड़ आएगा और न ही कोई पतन होगा उसका। यानी कि इस भौतिक जगत में जब तक साधना करेगा तो भी भगवान कहते हैं मैं उसे संभालूंगा, उसे प्रोटेक्शन लूंगा अगर वो भक्ति कर रहा है सीरियस होकर तो। और जब वो ना स्खलित वो इस भौतिक जगत में भी उसका पतन नहीं होगा, और बाद में जब वो मृत्यु हो जाएगी उसकी यह देह को त्याग देगा, तब भी भगवान कहते हैं न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमा मम, वो मेरे धाम में आ जाएगा और वहां से मैं उसे कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा। तो यहां तक तो भगवान ने बताया कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, लेकिन अगर हम जीव गोस्वामी को देखते हैं, श्री जीव गोस्वामी जो कि शरद गोस्वामी 101 हैं, वो कहते हैं पतन होता है। हाँ? पहले भगवान ने इतने सारे प्रमाण देकर, इतने सारे श्लोक्स बताकर हमें बताया कि मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूँ, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि होता है। अब इन परम वैष्णवों को क्या कहा जाए, बोला कहाँ होता है बताओ। अब चलो ठीक है, भगवान ने कह दिया नहीं होता है, आप कह रहे हो होता है तो आप बताओ कहाँ होता है। तब जीव गोस्वामी कहते हैं एक राजा थे जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, भक्ति में लीन थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पास आए, उन्हें प्रणाम नहीं किया तो वो राजा से हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए। अब वो महाराजा थे, उसने अपने सारे राज्य को छोड़ा, त्याग कर दिया, वन में चले गए, तपस्या कर रहे थे और वहां पर भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, और वहां पर दुर्वासा मुनि के श्राप से वो क्या बन गए, हाथी बन गए। पतन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, महाराजा भरत पूरी पृथ्वी के एक क्षत्र राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के राज्य को त्याग कर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के स्टेज पर आ गए थे, भगवान के साथ भाव में लीन हो गए थे और समस्त आसक्ति को समाप्त करके वो जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे। वहां पर एक हिरण के अंदर आसक्ति हो गई और राजा से जब वो भक्ति की भाव के स्टेज पर आ गए उसके बाद क्या बन गए, हिरण बन गए। भक्ति कर रहे थे कृष्ण की, परंतु फिर भी महाराजा भरत से हिरण की देह प्राप्त हुई। पतन हुआ कि नहीं हुआ? और सुनिए, महाराजा चित्रकेतु बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, परंतु पार्वती जी के श्राप से उन्हें वर्तासुर राक्षस बनना पड़ा। पतन हुआ कि नहीं हुआ? महाराजा भरत हिरण बन गए, महाराजा इंद्रद्युम्न हाथी बन गए, चित्रकेतु राजा राक्षस बन गए। तो पतन हुआ या नहीं हुआ? शास्त्र कहता है नहीं हुआ, क्योंकि पतन का मतलब क्या है कि आप अपनी भक्ति से नीचे गिरो। अभी भले ही उनके शरीर का पतन होता है, ये तो पतन जो है केवल उनके शरीर का हुआ है, परंतु उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति की ज्वाला भड़क रही थी वो तो और भी तेज होती गई। आप देखिए, जब महाराजा भरत जब इस भौतिक जगत में राज्य त्याग के उन्होंने जब छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति कर रहे थे, तब उनके मन में इतना वैराग्य नहीं था, तभी तो आसक्ति होगी हिरण के अंदर। लेकिन उसके बाद जब हिरण का देह लिया, तब एक कभी कुछ उन्होंने खाया तक नहीं, किसी को नहीं देखा, और हिरण का देह समाप्त हो गया। उसके बाद जड़ भरत बने, जड़ भरत बनने के बाद भी उनका वैराग्य इतना उत्तम हो गया कि वो कुछ भी बिल्कुल मत जो पागल होते ना उनकी तरह व्यवहार कर रहे थे। मतलब उन्नति का क्या मतलब है कि आपकी भक्ति में उन्नति हो, आपके वैराग्य में उन्नति हो। अभी ये महाराजा इंद्रद्युम्न महाराज तपस्या कर रहे थे, दुर्वासा मुनि आए, उनको प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने सोचा इस तरह यदि राजा सब ऋषियों का अपमान करता रहा तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेगा, कोई ऐसा तरीका प्राप्त हो कि इसे एक ही जन्म में, कितना शुद्ध भक्त है, इसे जल्दी से भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। इसको हाथी के देह में जो भगवान के प्रति उनकी लालसा थी, उनकी उत्कंठा थी, उस समय कितनी बढ़ गई थी जिस समय वो गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा था। जब गजेंद्र उस सरोवर में गए थे स्नान करने के लिए, और उस समय जब मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ लिया था, उस समय हजारों साल तक उन्होंने युद्ध किया, परंतु युद्ध का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। सारे देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे, और उस समय जो तीव्रता से उन्होंने भगवान को पुकारा था, जो हृदय के अंदर जो भगवान के प्रति इतना उनके अनुराग उत्पन्न हुआ था, वो कितनी सुंदर प्रार्थना, वो हाथी के शरीर में भगवान के सामने वह प्रार्थना जो उन्होंने पहले राजा होते हुए सीखी थी, वो राजा होते थे तब भी उन्होंने ये प्रार्थना सीखी थी, लेकिन वो प्रार्थना उनके हृदय से उस समय निकली जब वो हाथी थे। वो कहने लगे, माद्री प्रपन्न पशुपाश विमोक्षयाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यक्त्रिशो भगवति प्रिहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न पशुपाशवे, माद्रिक मेरे जैसा, मैं पशु हूँ, मेरे जैसा एक पशु भी यदि आपकी शरण में आ जाता है, पशु माधिक प्रपन्न, यदि मेरे जैसा अज्ञानी पशु भी आपकी शरण में आ जाता है, तो भी आप ऐसे करुणा निधि हो कि उसको आप उसके पाश से, पशु को हम देखते हैं बंधा होता है वो रस्सियों से और उसको बांध के रखा जाता है, लेकिन भगवान को कह रहे हैं कि मेरे जैसा अज्ञानी पशु भी आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तव में भक्तों हम सबकी दशा यही है इस जगत में, वास्तव हमारी सारी सबकी स्थिति पशु जैसी है, लेकिन हम कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हमें इस पशुपाश से मुक्त करो। पशु क्या करता है, वो बंधा हुआ होता है भौतिक रस्सी से, और हम सब बंधे हुए हैं किससे, अपनी अज्ञानता से। भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है उसको भूल कर इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है। मगर वो गजेंद्र कह रहा है, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, आप मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मुक्ताय, आप मुक्त हो। वास्तव में किसी को कोई मुक्त कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि वो स्वयं बंधा हुआ ना हो। ना केवल आप मुक्त हो, परंतु भूरी करुणाय, आपके अंदर करुणा का समुद्र है। हम बोलते ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु का मतलब होता है करुणा का समुद्र है आपके अंदर, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसे करुणा का अपनी करुणा की वर्षा करते उसके ऊपर। और आगे कहते हैं, चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मुक्त हो और उनके अंदर करुणा भी हो, लेकिन यदि उनके अंदर आलस्य हो तो वो कार्य नहीं करते, लेकिन आपके अंदर आलस्य नहीं है। नमो लयाय, आप तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे होते हो कि कब कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए और मैं उसे इस भवबंधन से मुक्त कर दूं। आप तो सदैव तत्पर रहते हो कि कभी कोई भक्त मेरा भुलाए और मैं फौरन उसकी सुरक्षा करने के लिए आऊं। आप सदैव तत्पर रहते हो, और स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत, आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, चाहे उसे कोई भी योनि मिले लेकिन आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हो। प्रत्येक दृशो भगवते बहते नमस्ते, और आप समस्त कर्मों के साक्षी बनकर हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हो, और आप सर्वशक्तिमान हो, आप असीम हो, इसे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो मानो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या इस जो पशुपाश तुम्हें अभी जो गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा हुआ था, तो बोला अब मगरमच्छ से छुटकारा दिला दूं तो आनंदित हो जाओगे, इसीलिए बुलाया ना। तब वो कहता है, नहीं प्रभु नहीं, मुझे इस मगरमच्छ के पास से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने आपको थोड़े बुलाया है। जी जी विशेष विशेना हमिहा मुयाखिम अंतर बहिष्या वृतये भयोन्या इच्छामि काले नायस्य विप्लवा तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम। जिजीविषेण, मैं इस शरीर में मैं अधिक जीना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा कि जब इस ग्राह से तुम्हारे शरीर को मुक्त करा दूंगा, तो तब भी वो कहते हैं ना ना हम मोया के, मैं बाद में जीना नहीं चाहता। अगर आप मुझे इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में ग्राह से ग्रस्त शरीर को यदि आप मुक्ति प्रदान कर दोगे और मुझे स्वतंत्र जीवन मिल जाएगा, तब भी मैं जीना नहीं चाहता। ये शरीर में अब ठीक है, क्या करूं? ऐसा शरीर है अंतर बहिष्यावृत्त ये भयोन्या, ये अंतर और बाहर से, ये शरीर तो भीतर और बाहर से दोनों से अविद्या से व्याप्त है। इस ये बाहर से देखने में हाथी का शरीर, हम देखते हैं हाथी के शरीर को, कोई किसी को हम बोलते यार तुम हाथी की तरह से अक्लमंद हो, ना कभी नहीं बोलते, बोले चीते जैसा चालाक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हाथी जो है ना वो बहुत बेवकूफ जानवर है, उसको पकड़ना भी आसान होता है। दूर से अगर हथनी का फोटो भी दिखा दिया जाए और वो आगे जाके खड्डे में गिर जाता है। तो और दूसरा, एक तो देखने में भी इसका शरीर और हृदय के अंदर भी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जैसे हमारा शरीर होता है मनुष्यों का, तो हमारा भी अंदर से कोई ज्ञान नहीं होता है, भीतर से हम लोग भी अज्ञानी है। आवरण है ज्ञान का, तभी तो इस भौतिक जगत में है। अगर ज्ञान होता तो फिर भगवान के धाम में चले गए होते। आवरण है ज्ञान का, तभी तो आसक्ति है, वरना तो भौतिक जगत में किसी भी वस्तु से आसक्ति ना कर कृष्ण प्रेम में लीन हो गए होते। लेकिन हमारा शरीर ऐसा ज्ञानवान लगता है, देखने में ऐसा लगता है ज्ञानी है, परंतु हाथी बेचारा वो कह रहा है अंतर बहिष्यावृत ये भयोन्या, कि हम मैं तो अंदर और बाहर से अज्ञानता में घिरा हुआ हूँ। तो इच्छा में काले नाल्यास्य विप्लव, मैं ये मुझे पता है कि समय कभी भी इस अज्ञान को नष्ट नहीं करेगा। आप ये मत सोचिए कि आप मेरे हृदय के अंदर या मेरे बाहर अज्ञानता है तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर क्या करूं, भगवान पूछते हैं उससे, तब वो बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम, मुझे इस भौतिक शरीर में आनंद नहीं चाहिए, मुझे आत्मलोक में प्राप्त करो। आत्मलोक यानी आपका जो लोक है जिसमें आप रहते हो। वरणस्य मोक्षम, उस लोक में जाने की मेरी जो अयोग्यता है आप उसको नष्ट कर दो। तो वास्तव में जीव का सहज स्वरूप क्या है, भगवान से प्रेम करना, और उस पर आवरण पड़ गया है जिसके कारण हम भगवान के साथ अपने प्रेम को पुनः निर्माण नहीं कर पा रहे। तो यह गजेंद्र के स्वरूप में कह रहे हैं कि मेरे शरीर में और मेरी बुद्धि में जो आवरण जो आपसे मुझे दूर कर रहा है, इस आवरण को हटा के अज्ञान को नष्ट करो और मुझे अपने लोक में ले लो, मुझे अपने धाम में लेके चलो, मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आकर आपकी सेवा करनी है। ये गजेंद्र आज हाथी के रूप में ऐसी प्रार्थना कर रहा था। तो बताइए उसकी प्रगति हुई है या उसकी उसका पतन हुआ है? वो वृत्तासुर नाम का जो असुर बन गया था चित्रकेतु राजा, उससे वो जब इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था ना, तब इंद्र को कह रहा था इंद्र तुम मारते क्यों नहीं, मारो मुझे, तुम अपने वज्र से मुझे मार कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन फिर भी मैं मर जाऊंगा, मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें विजय प्राप्त होगी, फिर भी तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे साक्षात भगवान प्राप्त होंगे। उस समय वो भगवान को याद कर रहे थे, भगवान आए उनके सामने और कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वो युद्ध का समय, ये देखिए ये युद्ध जब हो रहा होता है उस समय केवल रजोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन उस समय जिस समय युद्ध हो रहा है और युद्ध के टाइम पर उनके ऊपर शुद्ध सत्व जो है वो शुद्ध सत्व में आकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा बताओ मुझे वृत्तासुर, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा लोक प्रदान करूं तुम्हें, ब्रह्म लोक दूं क्या, कौन सा लोक, इंद्र चंद्र वरुण जितने भी लोक हैं वो सब मेरी अध्यक्षता में है, अब कुछ भी मुझसे मांग लो। तब वो कहता है नहीं प्रभु, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी शरण मिलनी चाहिए, मुझे केवल आपकी शरणागति चाहिए, केवल आपका सानिध्य चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय वो वृत्तासुर राक्षस जो प्रार्थना करता है भगवान से इतने सुंदर शब्दों में, वो महात्माओं ने उसको चतुर्श्लोकी भागवत कह दिया। इतनी सुंदर प्रार्थना वो राक्षस के स्वरूप में कर रहा है। अब बताइए उसका पतन हुआ है कि उन्नति हुई है, प्रगति हुई है? ये केवल प्रगति। भगवान अपने भक्त को भले ही किसी सर्कमस्टेंसेस में डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, तीव्रता बढ़ती है उसके प्रेम में, वो भगवान को प्राप्त करने की लालसा बढ़ती, और यही तो उन्नति है। आप मनुष्य शरीर में रहकर यदि भगवान के प्रति अपने प्रेम को, अपने भाव को, अपनी लालसा को विकसित नहीं कर सकते, तो ये है आपकी आपका पतन। ये है मनुष्य जीवन का सत्यानाश होना, कि आप मनुष्य बन रहे हो लेकिन फिर भी भगवान की ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या लाभ ऐसे जीवन का? श्रम एव ही केवलम, केवल निरिव्यर्थ का श्रम है। और अगर किसी को राक्षस का देह, हाथी का देह, हिरण का देह प्राप्त हो रहा है और उसका कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है, तो समझो यही प्रगति है। इसका मतलब भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। भौतिक शरीर का हम देख सकते हैं, भौतिक दृष्टि से हम देख सकते हैं पतन हुआ, लेकिन कितना जल्दी उन्हें प्राप्त होती है भगवान की? इतनी जल्दी प्राप्ति हो रही है। मनुष्य तो कभी कौन से कर्मों में फंसता है, कभी कौन से, लेकिन इन्होंने जिस तरह से भगवान को आसानी से प्राप्त किया, ऐसा शरीर भगवान ने उनको दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। तुम घोषणा कर दो, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी भक्ति में प्रगति कर सकूं। हरि बोल।